भारतीय आईटी शेयर असल में क्या टूट रहा है और बाजार ने प्रीमियम देना क्यों बंद किया। हर्षल दसानी द्वारा। मुख्य बातें, टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो ने 2020 से अब तक बायबैक पर लगभग ₹1.09 लाख करोड़ खर्च किए, जबकि FY25 का संयुक्त आडी महज लगभग ₹4,350 करोड़ था, यानी आरडी में लगाए हर एक रुपए के मुकाबले लगभग ₹25 वापस किए गए। तीनों प्रमुख कंपनियां राजस्व का 1% से भी कम आरडी पर खर्च करती हैं। टीसीएस लगभग 1%, इंफोसिस 1% से नीचे, विप्रो लगभग 0.5%। वैश्विक एआई बिल्डर्स बहुत अधिक निवेश करते हैं। मेटा राजस्व का लगभग 27% आरडी में लगाती है, अल्फाबेट लगभग 14%, माइक्रोसॉफ्ट लगभग 12% और मेटा का एक साल का आरडी बजट भारतीय तीनों का 6 साल का बायबैक बिल तिगुने से भी ज्यादा पार कर जाता है। एआई द्वारा लेबर आर्बिट्राज मॉडल को कमजोर करने और ग्रोथ धीमी होने के साथ बाजार ने भारतीय आईटी की रीप्राइसिंग शुरू कर दी है और एफआईआईज ने एक्सपोजर घटाया है। मूल समस्या पूंजी आवंटन की है, भविष्य बनाने की जगह बायबैक को तरजीह दी जा रही है। भारतीय आईटी के बारे में अभी जो कुछ भी जानना जरूरी है वह दो संख्याएं बता देती हैं। 2020 से अब तक देश की तीन सबसे बड़ी आईटी कंपनियों टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो ने अपने खुद के शेयर वापस खरीदने पर लगभग ₹1.09 लाख करोड़ खर्च किए हैं। FY25 में इनका संयुक्त आरडी खर्च लगभग ₹4,350 करोड़ था, यानी इन कंपनियों ने एक साल में भविष्य बनाने पर जितना ₹1 लगाया बायबैक चक्र में उसके मुकाबले लगभग 25 गुना वापस कर दिया। यह कोई गोलाई की गलती नहीं है, यह एक रणनीति है और बाजार ने इसे आखिरकार कीमत में उतारना शुरू कर दिया है। असल फर्क आरडी बनाम बायबैक, इसे 1:1 तक सीमित करें, राजस्व में आरडी की हिस्सेदारी और तब अंतर को सही ठहराना बहुत मुश्किल हो जाता है। टीसीएस राजस्व का लगभग 1% आरडी पर खर्च करती है, इंफोसिस 1% से नीचे, विप्रो 0.5% के करीब। अब उन कंपनियों को देखें जो एआई युग को वास्तव में परिभाषित कर रही हैं। मेटा अपने राजस्व का लगभग 1/4 आरडी में लगाती है, हाल की तिमाहियों में 28% के करीब। अल्फाबेट लगभग 14% पर चलती है, माइक्रोसॉफ्ट लगभग 12%। मेटा का एक साल का आरडी बजट करीब $44 बिलियन यानी लगभग ₹3.7 लाख करोड़, भारत की तीन सबसे बड़ी आईटी कंपनियों के 6 साल के बायबैक बिल से भी बड़ा है, तिगुने से ज्यादा। कंपनी आरडी नवीनतम वित्त वर्ष राजस्व का प्रतिशत भारतीय आईटी प्रमुख FY25 टीसीएस ₹2,630 crore 1.0%, इंफोसिस ₹1,296 crore 0.8%, विप्रो ₹431 crore 0.5%। वैश्विक एआई बिल्डर्स नवीनतम वित्त वर्ष मेटा $44 बिलियन 27%, अल्फाबेट $49 बिलियन 14%, माइक्रोसॉफ्ट $30 बिलियन 12%। आरडी के आंकड़े कंपनी फाइलिंग्स से लिए गए हैं। भारतीय आईटी के लिए FY25, अमेरिकी कंपनियों के लिए उनके नवीनतम वित्त वर्ष के तुलना का मापदंड राजस्व में आरडी की हिस्सेदारी है। कोई ऐसी एआई रणनीति नहीं बनती जो अपने खुद के शेयर खरीदने से शुरू हो, यह सिर्फ एक बुरी तिमाही नहीं है। आईटी में कमजोरी को डिमांड में ठहराव के रूप में पढ़ना आसान है, क्लाइंट विवेकाधीन परियोजनाओं को टाल रहे हैं, एक सॉफ्ट पैच जो 1-2 तिमाही में ठीक हो जाएगा। 2023 में यह एक उचित पठन था, 2 साल बाद अब इस दलील को मजबूत करना बहुत कठिन है। सेक्टर अर्निंग्स पर हाई टीन्स पर ट्रेड करता है, अपने दीर्घकालिक औसत से नीचे, लेकिन उस कारोबार के लिए सस्ता नहीं जो स्थिर मुद्रा के लिहाज से निम्न एकल अंकों में राजस्व बढ़ा रहा हो। निफ्टी 50 में आईटी का वजन कई साल के निचले स्तर पर खिसक गया है। 2021 से 22 के शिखर पर इंडेक्स के लगभग पांचवें हिस्से से गिरकर। विदेशी निवेशक साफ एआई एक्सपोजर के लिए कोरिया, ताइवान, जापान और अमेरिका की ओर रुख कर रहे हैं। यह बाजार का किसी एक प्रिंट पर प्रतिक्रिया नहीं है, यह बाजार का एक पूरे मॉडल को रीप्राइस करना है। 5 दरारें। दबाव एक ही दिशा से नहीं आ रहा, एक साथ 5 चीजें टूट रही हैं। राजस्व मॉडल भारतीय आईटी लेबर आर्बिट्राज पर बनी थी, बिलेबल घंटे उस लागत पर जो पश्चिम नहीं दे सकता था। एआई ठीक उसी परत को संकुचित करता है। बिल रेट्स नरम हो रहे हैं, इससे पहले कि डील विंस में भी यह दिखे। जब मूल्य की इकाई घंटे हो और सॉफ्टवेयर वे घंटे खुद करने लगे, तो पूरी मूल्य निर्धारण संरचना उजागर हो जाती है। मांग बीएफएसआई, रिटेल और हेल्थकेयर में विवेकाधीन खर्च उससे कहीं ज्यादा समय तक जमा रहा जितना एक दो तिमाही के ठहराव का वादा किया गया था। इससे भी बुरा यह है कि जो बजट हिल रहे हैं वे सीधे ओपनएआई, एंथ्रोपिक, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को जा रहे हैं। क्लाइंट का एआई लाइन आइटम अब किसी सर्विसेज वेंडर के जरिए नहीं जाता, जो प्रतिस्पर्धा उन्होंने खुद पैदा की। भारत में अब करीब 1900 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हैं, जिनमें लगभग 20 लाख लोग काम करते हैं। वैश्विक बैंक और बड़ी टेक कंपनियां बेंगलुरु और हैदराबाद में अपने एआई और इंजीनियरिंग हब बना रही हैं, उसी टैलेंट पूल से भर्ती करके उसी काम के लिए। भारतीय आईटी के क्लाइंट चुपचाप भारतीय आईटी के प्रतिस्पर्धी बनते जा रहे हैं। इनोवेशन की खाई। टोपास, एआई स्टूडियो, तरह तरह के प्लेटफॉर्म, ये वृद्धिशील हैं, कैटेगरी डिफाइनिंग नहीं। अभी भी सर्विसेज, अभी भी कोई खुद का आईपी नहीं, अभी भी कोई उल्लेखनीय प्रोडक्ट नहीं। पश्चिमी कंसल्टिंग ने आक्रामक तरीके से एआई क्षमताएं खरीदी हैं। भारतीय आईटी धीमी रही है और राजस्व के 1% से भी कम पर भविष्य बनाने की कोशिश कर रही है। लोग और राजनीति। हेडकाउंट आधारित मॉडल तभी टूटता है जब एआई प्रति प्रोजेक्ट घंटे घटाएं, बेंच यूटिलाइजेशन प्रभावित हो, वादा किए इंक्रीमेंट मार्जिन निचोड़े और एट्रिशन की कहानी हायरिंग की समस्या से पलटकर लेफ की समस्या बन जाए। इसके ऊपर USH-1B पिटीशन फीस लगभग $1,00,000 तक पहुंच गई है। भारत अमेरिका सर्विसेज ट्रेड अनिश्चित है और EU के AI नियम पहले से पतले मॉडल पर कॉम्प्लायंस का बोझ बढ़ाते हैं। पूंजी आवंटन ही असली संकेत है। यही वह हिस्सा है जो बायबैक के आंकड़े उजागर कर देते हैं। कंपनी 2020 से बायबैक कार्यक्रम कुल TCS 2020, 2022, 2023 ₹51,000 crore, इन्फोसिस 2021, 2022, 2025 ₹36,500 crore, विप्रो 2020, 21, 2023 ₹21,500 crore, 2020 से संयुक्त कुल ₹1,09,000 crore। 2020 से घोषित संचयी बायबैक मूल्य। इसके मुकाबले तीनों कंपनियों का FY25 का संयुक्त आदि लगभग ₹4,350 crore था। जब कोई मैनेजमेंट टीम साल दर साल नकदी वापस करती रहती है, TCS अकेले ने ₹16,000-18,000 crore की सीमा में कई कार्यक्रम चलाए हैं, तो वह कुछ कह रही है। वह कह रही है कि उसे उस पूंजी का अपने स्टॉक खरीदने से बेहतर कोई उपयोग नहीं मिल रहा। एक सामान्य वर्ष में यह शेयरधारक हितैषी अनुशासन है। AI कैपेक्स सुपरसाइकिल के बीच में जब हर वैश्विक समकक्ष अगला प्लेटफॉर्म बनाने के लिए राजस्व के दोहरे अंकों के प्रतिशत खर्च कर रहा हो, यह एक स्वीकारोक्ति के करीब है। नकदी बाहर जा रही है, भविष्य में नहीं, यही संकेत है। गाइडेंस नहीं, अर्निंग्स कॉल की टिप्पणी नहीं, चेक। मल्टीपल को क्या थामे हुए है? बुल के सब दो बिंदुओं तक सिमट गया है। पहला है रुपए की कुशन। कमजोर रुपया रिपोर्टेड राजस्व और मार्जिन को आकर्षक दिखाता है, लेकिन यह एक रिपोर्टिंग प्रभाव है, समाधान नहीं। यह डिमांड का एक भी नया डॉलर या खुद के आईपी की एक भी नई इकाई नहीं बनाता। दूसरा है बैलेंस शीट की गुणवत्ता और नकदी सृजन, और यह हिस्सा वास्तव में सच्चा है। ये साफ नकदी समृद्ध कारोबार है, लेकिन एक मजबूत बैलेंस शीट प्रीमियम मल्टीपल को उचित नहीं ठहराती जब ग्रोथ गायब हो, राजस्व मॉडल पर खुले तौर पर सवाल उठ रहे हों और सरप्लस को पुनर्निवेश के बजाय वापस किया जा रहा हो। भारतीय आईटी पर नजरिया। बाजार भारतीय आईटी को एक तिमाही के लिए दंडित नहीं कर रहा, वह उस सेक्टर की रीप्राइसिंग कर रहा है जिसने अपनी नकदी वापस करने का चुनाव तब किया जब बाकी दुनिया बनाने में व्यस्त थी। जब तक यह पूंजी आवंटन का चुनाव नहीं बदलता, जब तक राजस्व में आडी की हिस्सेदारी यह नहीं दर्शाने लगती कि कंपनी एआई में प्रतिस्पर्धा करने का इरादा रखती है बजाय आर्बिट्राज के आखिरी अवशेषों को काटने के, तब तक भारतीय आईटी शेयरों में तेजी बिक्री के मौके ज्यादा बनेगी। बैलेंस शीट मजबूत है, रणनीति समस्या है, और किसी भी बायबैक ने कभी किसी कंपनी को भविष्य नहीं खरीदा। यह सामान्य जानकारी है, कोई निवेश सलाह नहीं।